ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की अभिव्यक्ति को लेकर स्पष्टीकरण की मांग के साथ प्रतिपक्षियों ने संघीय संसद के दोनों सदनों की बैठकों को किया अवरुद्ध। प्रतिनिधि सभा की कल की बैठक में सांसद के अमर्यादित व्यवहार के विषय में जांच के लिए समिति हुई गठित। रासोपा के सभापति रवि लामी झाने पांच दिवसीय भारत भ्रमण के क्रम में पहुंचे नई दिल्ली। दिल्ली की भैरवी गांव पालिका में जीप हादसे में तीन लोगों की हुई मौत, पांच की हालत गंभीर। और म्यांमार के एक गांव में हुए विस्फोट में कम से कम 55 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेपाल भारत सीमा संबंधी बयान पर स्पष्टीकरण की मांग को लेकर विपक्षी दलों का विरोध जारी रहने के कारण प्रतिनिधि सभा की बैठक मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री शाह के बयान को तथ्यहीन और त्रुटिपूर्ण बताते हुए उसे अभिलेख से हटाने और वापस लेने की मांग की। उनका कहना था कि नेपाल द्वारा भारत की भूमि अतिक्रमण किए जाने संबंधी प्रधानमंत्री की टिप्पणी का कोई प्रमाण नहीं है। विरोध के बीच सभामुख टोल प्रसाद अर्याल ने सदन संचालन में सहयोग की अपील की, लेकिन विपक्षी सांसदों के लगातार विरोध के कारण बैठक स्थगित करनी पड़ी। इस बीच रविवार की बैठक में संसद के भीतर कथित अमर्यादित व्यवहार की जांच के लिए प्रतिनिधि सभा सचिव प्रकाश अधिकारी के संयोजकत्व में एक समिति भी गठित की गई है, जिसे 7 दिन के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल दोपहर 1 बजे होगी। राष्ट्रीय सभा की बैठक में भी प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के नेपाल भारत सीमा संबंधी बयान को लेकर विवाद जारी रहा, जिसके कारण आज की बैठक स्थगित कर दी गई। सांसदों ने प्रधानमंत्री के उस बयान का विरोध किया जिसमें उन्होंने नेपाल द्वारा भी भारत की कुछ भूमि उपयोग में होने की बात कही थी। सांसदों ने इसे राष्ट्रहित के विपरीत बताते हुए बयान को सुधारने की मांग की। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल ने कहा कि विभिन्न माध्यमों से प्रधानमंत्री का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित कराया जाएगा और समस्या के समाधान का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने सांसदों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करने का आग्रह भी किया। हालांकि सांसदों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके बाद अध्यक्ष दाहाल ने बैठक दूसरी बार भी स्थगित कर दी। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक कल दोपहर 1:15 बजे होगी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामी झाने पांच दिवसीय भारत भ्रमण के क्रम में आज नई दिल्ली पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन के न्योते पर नई दिल्ली पहुंचे सभापति लामी झाने का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर भाजपा के महासचिव और विदेश विभाग प्रमुख ने स्वागत किया था। भ्रमण के दरमियान सभापति लामी झाने के उच्चस्तरीय राजनीतिक और कूटनैतिक भेंट वार्ताओं के कार्यक्रम हैं। भ्रमण में उनके साथ श्रीमती निकिता पौडेल, रासोपा सह महामंत्री विपिन कुमार आचार्य, विदेश विभाग प्रमुख दीपक बोहरा और स्वकीय सचिव प्रदीप आचार्य शामिल हैं। दैलक जिले की भैरवी गांवपालिका में एक यात्री जीप दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक समेत तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सुरखेत से कालीकोट जा रही जीप आज दोपहर करीब 1 बजे भैरवी गांवपालिका पांच कालगौंडा में हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कालीकोट शिवकालिका गांवपालिका पांच के 35 वर्षीय चालक कल बहादुर रोकाया, वार्ड नंबर 4 के 38 वर्षीय मित्र सुनार और इसी गांवपालिका वार्ड नंबर 6 की 55 वर्षीय पुलती सरा विक की मौत हो गई। ये जानकारी पुलिस ने दी। घायलों को स्थानीय लोगों और सुरक्षा कर्मियों की सहायता से उपचार के लिए जिला अस्पताल तैलक भेजा गया। दांग के तुलसीपुर में एक टिपर की टक्कर से पिता और पुत्र की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार लम्ही नगरपालिका पांच निवासी 35 वर्षीय मनोज नेपाली और उनके 5 वर्षीय पुत्र मीनराज नेपाली की उपचार के दौरान कोहलपुर शिक्षण अस्पताल में मृत्यु हो गई। आज सुबह तुलसीपुर के गुलम चौक पर एक टिपर ने विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। दुर्घटना में मनोज नेपाली की पत्नी 34 वर्षीय अमृता नेपाली भी घायल हुई है, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने टिपर चालक को हिरासत में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजी।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजी।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहा नै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
है त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ विक्रम तिमल सिन्हा और सार्वजनिक कूटनीति संबंधी अमेरिकी उप विदेश मंत्री सारा बी रोजर्स के बीच आज भेंटवार्ता हुई। भेंट के दौरान नेपाल अमेरिका द्विपक्षीय संबंध, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, डिजिटल सुरक्षा और निवेश विस्तार जैसे विषयों पर चर्चा हुई। अमेरिकी उप विदेश मंत्री रोजर्स ने कहा कि अमेरिका सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्षेत्र में नेपाल के साथ सहयोग बढ़ाने का इच्छुक है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी कंपनियां नेपाल में निवेश विस्तार करना चाहती हैं और इसके लिए निवेश अनुकूल वातावरण तथा नीतिगत स्थिरता आवश्यक है। उन्होंने डिजिटल सुरक्षा, ऑनलाइन ठगी, अश्लील सामग्री के प्रसार और बाल सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने में सहयोग की भी प्रतिबद्धता व्यक्त की। वहीं संचार मंत्री डॉ तिमल सिन्हा ने कहा कि नेपाल सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आर्थिक और प्रशासनिक रूपांतरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में सभी प्रकार के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग का स्वागत करता है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने आगामी 7 से 9 आषाढ़ तक चितवन में होने वाले अपने प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन की तैयारियां तेज कर दी हैं। महाधिवेशन को भव्य और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पार्टी सभापति रवि लामिछाने के नेतृत्व में मूल आयोजक समिति का गठन किया गया है। पार्टी प्रवक्ता कविन्द्र बुरला कोटी के अनुसार समिति में उपसभापति एवं अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले, महामंत्री कविन्द्र बुरला कोटी और भूपदेव शाह सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं। रासोपा ने बताया है कि महाधिवेशन की तैयारी को प्रभावकारी बनाने के लिए सभी केंद्रीय सदस्यों और 7 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्षों को भी मूल आयोजक समिति में शामिल किया गया है। झापा की शिवशताक्षी नगरपालिका 4 स्थित झापा एनर्जी प्लांट में आग लगने से लगभग 6 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जिला प्रहरी कार्यालय झापा के अनुसार आज दोपहर लगी आग में प्लांट में मौजूद विभिन्न मशीनरी और उपकरण जलकर नष्ट हो गए। ये प्लांट लाल प्रसाद सांवा के स्वामित्व में है। प्रहरी, दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों के संयुक्त प्रयास से आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। म्यांमार में रविवार को एक इमारत में जोरदार धमाका हुआ जिसमें 55 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस इमारत में खनन के लिए इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक रखे हुए थे। नामखाम टाउनशिप के कोंगटुप गांव में हुए इस धमाके में 55 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और करीब 70 लोग घायल हो गए। म्यांमार में यह इलाका चीनी सीमा से करीब 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान ने अमेरिका से मध्यस्थ के जरिए हो रही बातचीत को निलंबित करने का फैसला किया है। ईरान का कहना है कि लेबनान में सीज फायर भी युद्ध विराम की शर्तों में से एक था और अब लेबनान सहित सभी मोर्चों पर इस युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, इसलिए ईरान की नेगोसिएशन टीम ने अप्रत्यक्ष बातचीत को रोकने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान और गजा पर इसराइली हमलों को फौरन बंद करने और लेबनान के कब्जे वाले क्षेत्रों से पूरी तरह से वापसी होने तक कोई बातचीत नहीं होगी। सैन्य और सुरक्षा संस्थानों के करीबी माने जाने वाली इस समाचार एजेंसी ने लिखा है कि रेजिस्टेंस फ्रंट और ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद करने और बाब अल मंडाब स्ट्रेट सहित अन्य मोर्चों को सक्रिय करने और नए मोर्चे खोलने का लक्ष्य रखा है। पिछले कुछ घंटों में वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों ने लेबनान में इसराइली हमलों को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिनमें विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी शामिल हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, इस युद्ध विराम का किसी एक मोर्चे पर उल्लंघन सभी मोर्चों पर इसके उल्लंघन के समान माना जाएगा। युद्ध विराम के किसी भी उल्लंघन के परिणामों की जिम्मेदारी अमेरिका और इसराइल पर होगी। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने सेना को लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर हमला करने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जिस जगह पर हमला करने का आदेश दिया गया है उसे दहिया कहा जाता है और ये हिजबुल्लाह का अहम गढ़ माना जाता है। इससे पहले लेबनान के राष्ट्रपति की तरफ से एक बयान जारी किया गया था जिसमें उन्होंने इसराइल के हमलों की कड़ी निंदा की थी। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में आज लेबनान की स्थिति पर विचार किया जाएगा। इस बैठक में ताजा तनाव और क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की जाएगी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की अभिव्यक्ति को लेकर स्पष्टीकरण की मांग के साथ प्रतिपक्षियों ने संघीय संसद की दोनों सदनों की बैठकों को किया अवरुद्ध। प्रतिनिधि सभा की कल की बैठक में सांसद के अमर्यादित व्यवहार के विषय में जांच के लिए समिति हुई गठित। रासोपा के सभापति रवि लामी झा ने 5 दिवसीय भारत भ्रमण के क्रम में पहुंचे नई दिल्ली। देलह की भैरवी गांव पालिका में जीप हादसे में 3 लोगों की हुई मौत, 5 की हालत गंभीर और म्यांमार के एक गांव में हुए विस्फोट में कम से कम 55 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।